Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक बार परमात्मा ने अपने एक फरिश्ते को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हें नीचे धरती पे जाना है। फरिश्ते ने कहा कि प्रभु, यहाँ तो आप सारा कुछ मेरा ध्यान रखते हैं, नीचे मेरा ध्यान कौन रखेगा, कौन ख्याल करेगा मेरा? और फिर नीचे की तहजीब के बारे में, वहाँ कैसे रहते हैं, खाते पीते, बोलते चलते हैं, वहाँ के रीति रिवाज क्या हैं, उनके बारे में तो मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। वहाँ जा कर के मैं क्या करूँगा, वहाँ तो मैं परेशान हो जाऊँगा। परमात्मा ने कहा, नहीं, ये सारी व्यवस्था मैंने नीचे तुम्हारे लिए करके रखी है। जैसी देखभाल यहाँ तुम्हारी होती है, वैसे ही देखभाल तुम्हारी नीचे भी होगी। फरिश्ते ने फिर भी कहा कि प्रभु, यहाँ सुख दुख हर समय आपकी छत्र छाया मेरे ऊपर रहती है और मैं निश्चिंत अनुभव करता हूँ। नीचे ऐसा कौन होगा जिसकी छत्र छाया में मैं अपने आप को निश्चिंत अनुभव करूँ? परमात्मा ने कहा, नीचे तुम्हारे माता पिता ये कार्य करेंगे। जो कार्य मैं ऊपर करता हूँ तुम्हारे लिए, वही कार्य नीचे तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए करेंगे, क्योंकि वो संसार में परमात्मा के बाद दूसरे स्थान पे हैं, जो कि परमात्मा की तरह ही, अर्थात मेरी तरह ही अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। इसलिए तुम निश्चिंत होकर के जाओ, सारे जीवन वो तुम्हारे साथ साए की तरह रहेंगे, वो तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, तुम्हारे हितैषी हैं, तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और हर पल तुम्हारे साथ रहेंगे सुख और दुख में। सचमुच कितनी सुंदर बात कही ना मित्रों परमात्मा ने। माता पिता ठीक यही कर्तव्य पूरे जीवन करते हैं। जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर हमें बड़ा करना, पालना पोसना, हर चीज़ सिखाना, अच्छे से अच्छी चीज़ हमारे लिए उपलब्ध कराना और हमारे दुख को दूर करने का प्रयास करते रहना। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनके बच्चों के माथे पे, जीवन पे दुख का साया आए, और यदि आ जाता है तो वो अपनी नींद छोड़ देते हैं हमारे दुख को दूर करने के लिए। तो सचमुच इस धरा पे वो हमारे लिए परमात्मा के तुल्य ही हैं, इसलिए हमें उनका बहुत दिल से आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और कल जैसे एक बात निकल के आ रही थी कि कभी यदि वो हमारे हित में हमें डांट देते हैं या मार देते हैं, तो इसे भी हमें प्रसाद की तरह ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कल्याण में होता है, हमें आगे बढ़ाने वाला होता है। ये कैसे होता है, अर्थात ये डांटना या उनका मारना कैसे हितकारी होता है, ये मैं इस एपिसोड के अंत में आपके सम्मुख रखूंगा। आइए पहले भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं आज की इस कड़ी में और आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। प्रता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका।
थैंक यू
प्रता जी। वैसे भी माता पिता बचपन से लेकर के इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि बच्चों के मन में ये भाव आ जाता है कि पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ किया नहीं, या उनकी अवज्ञा करने लगते हैं, बात नहीं मानते हैं। ऐसे में आप क्या संदेश सभी बच्चों को देंगे?
देखिए, माता पिता न होते तो हम सब भी कहाँ से होते
जी।
इसलिए जन्मदात्री माँ और पालनकर्ता पिता हम सभी के लिए सम्माननीय हैं, चाहे हम बड़े भी हो गए। बच्चों की तो बात छोड़ो, अपने माता पिता और गुरुजनों के लिए हमारे मन में बहुत श्रेष्ठ भावना रहती है और रहनी भी चाहिए। लेकिन आजकल युवा पीढ़ी पर कुछ और प्रभाव पड़ा हुआ और हमारी एजुकेशन में भी इस तरह की कोई टीचिंग दी नहीं जाती कि वो अपने बड़ों का कैसे सम्मान करें। ये सब खेल 50 साल में बिगड़ चुका है संसार का। उसे पहले तो कुछ और खेलता है। बच्चे अपने माँ बाप की ब्लेसिंग्स लेकर ही पढ़ने जाते थे, पढ़ने भी बहुत कम बच्चे जाते थे। एजुकेशन बहुत कम थी लेकिन बुद्धिमानी बहुत ज़्यादा थी। एजुकेशन कम होने से भी मनुष्य में सात्विकता बहुत अधिक थी। नैतिक मूल्य तो एकदम से टॉप पर थे। एक दूसरे को मदद करना, दूध तो कोई बेचता ही नहीं था, दूध बेचना पाप समझा जाता था। तो ये खेल थोड़े समय में बिगड़ा है। अब जरूरी है कि हमारे स्कूल कॉलेजों में ऐसी शिक्षाएं बच्चों को मिले ताकि वो अपनी खोई हुई संस्कृति को पुनः प्राप्त करें। बाकी मैं युवकों को कहूँगा कि माता पिता आपके लिए सब कुछ हैं, पहला स्थान उनका ही है, इसलिए उन्हें सच्चे मन से ब्लेसिंग्स लें उनकी। माता पिता सभी के लिए पहले स्थान पर हैं और अति सम्माननीय हैं। हम ऐसा उनके लिए सम्मान और अपना व्यवहार रखें कि उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी दुआएं सदा हमारे साथ हों। यह आज तक बहुत केसेस में देखा गया, जिन बच्चों के साथ माँ बाप की दुआएं नहीं होती उनको अपने लक्ष्य को पाने में काफ़ी कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि बहुत गहरा इम्पैक्ट माँ बाप के वाइब्रेशंस का बच्चों पर पड़ता है। इसलिए सभी युवक अपने को थोड़ा सा अंतर्मुखी करके विचार करें, उनको अपना जीवन कैसे जीना है। मैं तो कहूँगा बच्चे 10वीं 11वीं क्लास में आ गए, अब उन्हें अपने जीवन के बारे में स्वचिंतन प्रारंभ कर देना चाहिए। कैसा व्यवहार हो उनका माता पिता के प्रति, उनसे ब्लेसिंग्स कैसे वो लें, उनकी आज्ञाओं का कैसे पालन करें। तो सभी युवक आज्ञाकारी बने, वफादार बने, माता पिता की बात को सर्वोपरि रखें, क्योंकि वो बच्चों के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी होते हैं, और उनकी गुड ब्लेसिंग्स प्राप्त करें।
जी जी प्रथा जी, जैसे जैसे बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं और फ्रेंड सर्कल में आते हैं, अपने मित्रों के साथ उठते बैठते हैं, उनका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा पड़ने लगता है और माता पिता का प्रभाव थोड़ा हल्का होने लगता है। ऐसे में कैसे इस चीज़ को ठीक किया जाए कि पेरेंट्स का प्रभाव बच्चों पे ज़्यादा हो, वहाँ का प्रभाव कम हो? क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो भी उल्टी सीधी चीज़ें बच्चे सीखते हैं, सीधी भी सीखते हैं लेकिन उल्टी भी सीख जाते हैं, वो फ्रेंड सर्कल से ही सीखते हैं, तो यहाँ का प्रभाव ज़्यादा कैसे हो?
हाँ बिल्कुल, प्रभाव तो स्टूडेंट्स पे अपने फ्रेंड्स का ही बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने कहा, हमारी एजुकेशन में ऐसी टीचिंग्स का बहुत ज़्यादा अभाव हो गया है, तो बच्चों को स्पिरिचुअलिटी ज़रूर सिखानी पड़े। और बच्चे अगर अच्छे स्वमान का अभ्यास करें, जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं तो भगवान की संतान हूँ, मैं महान हूँ, तो इससे वो सुरक्षित होंगे, बहुत उनके विचारों में महानता आएगी। और जो ये प्रभाव साथियों का पड़ता है, विशेषकर बुरा प्रभाव, उस बुरे प्रभाव को इनके वाइब्रेशंस रिफ्लेक्ट कर देंगे, वापस भेज देंगे, वो इनके अंदर आ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे स्वमान का अभ्यास में सभी युवकों को कहूँगा कि वो ये स्वीकार कर लें, हम भगवान की संतान हैं, देयरफॉर वी आर ग्रेट, हमें महान बनना है, महान कार्य करना है, क्योंकि हम भगवान की संतान हैं। तो इससे बस वो अच्छाई सीखेंगे, अच्छाई के लिए अपनी बुद्धि के द्वार खोल कर रखें, और जहाँ बुराई दिखाई दे, सुनने में भी आती है, जिनके साथ रहते हो ऐसा करने भी लगते हैं, बोलने लगते हैं, तो कानों के द्वार, बुद्धि के द्वार उस समय बंद कर लें चुपचाप, कि ये बात हमारे काम की नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है, उपयोगी नहीं है, इसे जाने दो।
प्रथा जी, लेकिन जैसे ही फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, मुझे लगता है ये वाली जो बात है कि मैं महान आत्मा हूँ या आध्यात्मिक चिंतन की बात है, बहुत ही कम है आजकल यदि देखा जाए तो। और प्रभाव उनका, कान नाक बंद करने वाली बात कितनी भी कर लें लेकिन वो प्रभाव उनके ऊपर पड़ ही जाता है, ऐसे में वो क्या करें या फिर पेरेंट्स क्या करें, इस पर थोड़ा सा प्रकाश चाहूँगा।
देखिए ये सब तो है, इसीलिए मैंने उन्हें कहा, बच्चों को ही मैंने कहा कि वो ये चीज़ सीखें, वहाँ कोई सिखा नहीं रहा, उनका वातावरण ही ऐसा है, बाह्य मुक्ता का रहता है, लेकिन ये चीज़ बच्चों को सीखनी है। और हमने देखा कि 50 बच्चों में से एक दो बच्चे ऐसे अवश्य होते हैं जो ऐसी अच्छी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, हम महान हैं, हमें महान कार्य करने हैं, हमें ये सब नहीं करना जो ये सब लोग कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं, हमें तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो ये स्वमान उन्हें अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। और रही बात माँ बाप की, वो अपने घर में स्पिरिचुअल माहौल बनाए। अब क्या हो गया है कि माँ बाप भी स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर चले गए हैं, वो भी अपने कार्य धंधों में, कहीं कहीं अपने ही संघर्ष में, कहीं कहीं समस्याओं के कारण टेंशन में, और कहीं कहीं क्या होता है, दोनों जॉब पर जाते हैं तो वहाँ से हारे थके आते हैं वो। अब बच्चों को उनसे अच्छे वाइब्रेशंस मिले, ये भी बहुत कम गुंजाइश रह गई है। फिर भी माँ बाप जो जॉब में नहीं है, माताएं, वो अपने घर में बहुत अच्छा माहौल बनाएं, स्पिरिचुअल माहौल बनाएं, तो बच्चे घर से भी बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखेंगे।
बिल्कुल। और बता जी, इस एक विशेष चीज़, और जैसे मैंने कहा कि जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे होते हैं तो प्रभाव बाहर का ज़्यादा पड़ता है, पेरेंट्स का ही संपूर्ण प्रभाव पड़े ऐसा देखने में कम आता है। मतलब जब बच्चे इस उम्र में होते हैं तो ऐसा क्या होता है कि बड़ों की बातें उन्हें लगता है कि नहीं, ये थोड़ा सा पौराणिक बात कर रहे हैं, या ये बातें तो शायद बहुत उम्र हो जाने के बाद हम करेंगे या सीखेंगे, अभी जो चीज़ें हम अपने साथियों के साथ सीख रहे हैं शायद ये आज के ज़माने का दौर है और ये हमें करना पड़ेगा, तो शायद इस बात को वो रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ किस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाए ताकि ये अच्छी बातें उनकी मानस पटल पे छपे।
मैंने उस दिन भी कहा था कि IAS के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इन्होंने मोरलिटी को स्पिरिचुअलिटी को जगह दे दी है।
जी जी।
तो हो क्या रहा है युवकों के लिए कि उन्हें वो चीज़ चाहिए किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए, वहाँ लोग ऐसी बात उनसे पूछते हैं, स्पिरिचुअल बात तो कोई पूछते ही नहीं। तो इस कारण वो उसी में रह जाते हैं कि हमें ये जानकारी ज़्यादा चाहिए, और वो किसी दूसरे अपने साथी को देखते हैं कि वाह इसे तो इस क्रिकेट की छोटी से छोटी जानकारी पता है कि कपिल देव ने जब भारत ने गोल्ड मेडल लिया, कपिल देव कैप्टन थे, तब उसने कितने नंबर वो रन बनाए थे, ये तो इसको सब पता है। अरे हम तो बुद्धू ही रह गए, और कहीं इंटरव्यू में हमसे पूछ लिया तो क्या हो जाएगा। तो वो उस ओर चलता है। मैंने एक क्रिकेट की बात कही, ऐसी फिल्मों की बातें, ऐसी और दुनियावी बातें, हाँ, जिसको जनरल नॉलेज तो कहते हैं पर उसमें कई वेस्ट नॉलेज भी आ जाती हैं। उसमें बच्चे ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं जब वो देखते हैं कि उनके साथी इन सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो ये समय की ऐसी मांग हो गई। तो मैं कहूँगा ऊपर के लेवल से यदि इसको बदला जाए, अभी जैसे IAS वालों को पता लग जाएगा कि भाई अब स्पिरिचुअलिटी और मॉरलिटी के क्वेश्चंस बहुत आएंगे, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो वो इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। गए तो वो भी यहीं से है ना, कोई वो देवता तो नहीं है, भले ही वो बुद्धिमान हों, लेकिन उनकी बुद्धिमानी के साथ जब स्पिरिचुअलिटी और मॉरलिटी भी जुड़ जाएगी तो उनकी बुद्धि और डिवाइन होगी, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। और आने वाले समय में तो बल्कि जब और ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि धार्मिक संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष थोड़ा तेज हो सकता है कहीं भी, जैसे बहुत देशों में हुआ है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो अधिकारी हैं उच्च वर्ग पर, उनको ये सब नॉलेज बहुत गहराई से होनी चाहिए। ऐसा ना हो वो कुछ जानते ही ना हो। तो ये चीज़ जब ऊपर के लेवल पर आ जाएगी तो सभी को इस पे बच्चों को ध्यान जाएगा कि बचपन से ही हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, इसकी स्टडी करनी चाहिए, इसके क्वेश्चन आंसर क्विज जैसी करनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है।
बिल्कुल, मतलब यदि पाठ्यक्रम में शामिल हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं शायद दूर हो जाएंगी, पेरेंट्स की भी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि वही बात लगती है जी कि उनको लगता है कि शायद ये सारी बातें तो हमारी किसी काम की नहीं है, जो मूल्यों की आध्यात्म की बातें हैं, ये सारी चीज़ें जो दुनियावी जानकारी है उसकी शायद हमें आवश्यकता है, इसलिए शायद उस ओर वो बढ़ जाते हैं। एक विशेष चीज़ रहता है जी, पहले का जो समय था, आप भी इस बात को लगातार कहते हैं कि 50 साल में पूरी दुनिया बदल गई है, पहले के समय में माता पिता डांट भी देते थे बच्चों को, मार भी देते थे, तो बच्चे प्रसाद की तरह लेते थे और हाँ सुधरने की कोशिश करते थे, अपनी गलती स्वीकार करते थे। आजकल माहौल बदल गया है, बच्चे सेंसिटिव हो गए हैं, यदि उन्हें डांट भी दिया जाए तो फिर उसका इतना ज़बरदस्त रिएक्शन आता है कि पेरेंट्स भी डर जाते हैं कि इनको कहें कैसे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए?
या तो बच्चे रूस के घर से ही बाहर निकल जाते हैं, माँ बाप उन्हें ढूंढते रहते हैं 5-7 दिन कहाँ गया, या वो सुसाइड करने की धमकी देने लगते हैं, अच्छा तुम ऐसे करते हो हम तुम्हें बताएंगे। बदले की भावना ऐसी ज़्यादा हो जाती है कि सुसाइड करके हम इनसे बदला लेना चाहते हैं ताकि ये जीवन भर दुखी रहें। तो ये टेंडेंसी बहुत सारे बच्चों की होती जा रही है। इसमें फिर मैं वहीं आऊँगा कि बच्चों को स्पिरिचुअलिटी सिखाने की परम आवश्यकता है। जीवन का क्या महत्व है, उनके एक एक श्वास का क्या महत्व है, उनके एक एक कर्तव्य का क्या महत्व है, और ये उनको रियलाइज होना चाहिए कि माँ बाप उनके लिए कितने कल्याणकारी हैं। पर ये तभी होगा, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ एक बार कम से कम वीक में एक बार बैठें, अवश्य घंटों बैठें, वो आपस में हंसे बहले, एक दूसरे के और समीप आएं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो बच्चे माँ बाप के इतने समीप रहेंगे कि माँ बाप जब उन्हें कुछ कहेंगे उसको समझेंगे। अब दोनों जॉब में हैं, वो भी थकी हुई आ रही माता जी रात को, भाई भोजन बना के जल्दी सो जाना है मुझे, तो बच्चों की ओर उस तरह का ध्यान नहीं है, बस थोड़ा डांट डपट दिया, होमवर्क कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, तो बच्चों को उनसे गुड फीलिंग तो होती नहीं। तो बच्चों को अपनी मेंटेलिटी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है इसमें। इसलिए मैं हमेशा एक अभ्यास देता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। घर से रूस के बाहर चले जाना, उसे माँ बाप बहुत दुखी हो जाना, या सुसाइड करने की धमकी दे देना, इससे तो हम जीवन के लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे। और कुछ स्टेट्स में ये हो गया है, जैसे हम दार्जिलिंग की ओर गए तो बताया यहाँ सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है लोगों की, रोज 6-7 केस यहाँ सुसाइड के होते हैं। तो उन्होंने भी कहा बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे थे कि मैसेज दो पूरे हमारे छोटे से स्टेट के लिए, ताकि खासकर युवकों में और जो बड़े हैं उनमें भी ये टेंडेंसी खत्म हो जाए। तो बच्चों को अपने को सशक्त बनाने की जरूरत है अब, कि ये सब जो चीज़ें हैं, माँ बाप को सबक सिखाना या रूस के बाहर चले जाना, ये हर तरह से घरों में या व्यक्तिगत जीवन में अशांति पैदा करता है। अब मान लो माँ बाप बच्चे से डर ही गए, वही से कुछ कहेंगे तो कल और कुछ दुष्परिणाम ना हो जाए, अब वो बच्चे को कुछ नहीं कहते, इससे बच्चा गलत राह पे जा सकता है, इससे युवक बिल्कुल अपने भविष्य उज्जवल बनाने से दूर जा सकते हैं बहुत, उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं। इसलिए मनुष्य को कुछ कहने वाला भी, कुछ डांटने वाला भी, कोई शिक्षा देने वाला भी, हर मनुष्य को, चाहे हम बड़े हैं हमें भी हम महसूस करते हैं कोई हमें रोकने वाला भी चाहिए, कहीं हम गलत कार्य पे जा रहे हैं, किसी की हमारे ऊपर एक कटु दृष्टि भी चाहिए ताकि हम कुछ गलती ना कर दें अपने जीवन में और फिर जीवन भर पश्चाताप करें। तो बच्चों को भी इस तरह की मेंटेलिटी अपनी बनानी पड़ेगी।
शायद इसीलिए सरकार में भी पक्ष और विपक्ष दोनों रहता है कि सरकार यदि जो शासन में बैठे हुए हों कुछ गलत करें तो विपक्ष वाले उनको रोकते टोकते रहें ताकि सब कुछ सही सही चले। लेकिन बताइए जी, परिस्थिति तो वही आ जाती है, पेरेंट्स क्या विशेष अभ्यास करें, मैं ये जानना चाहूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास जो केसेस आजकल आते हैं पेरेंट्स के आते हैं कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें बोलना भी पड़ता है उनको, ना बोलें तो बिगड़ेंगे, बोलते हैं तो वो बिगड़ते हैं, अर्थात नहीं पढ़ते हैं और साथ ही साथ बहुत कुछ उल्टा सीधा करते हैं, धमकी दे देते हैं, उनकी तरफ से क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो या समझाने का तरीका कैसा हो कि बच्चे समझ भी जाएं, बात भी बन जाए, वो कहते हैं ना वो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे।
मैं एक चीज़ जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की है सबको सिखाता ही हूँ
जी,
खुद अगर स्वमान में रहेंगे और दूसरों को आत्मा देखकर बात करेंगे तो आपके बोल में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा। ये भगवान के महावाक्य हैं और हमने इसको प्रैक्टिस में लाया है, बहुतों ने लाया है और देखा है कि स्वमान की स्थिति और आत्मिक दृष्टि से हमारे बोल का प्रभाव दूसरों पर बहुत अच्छा पड़ता है। अब माँ बाप के पास बच्चों के लिए शुभ भावनाएँ तो बहुत हैं ही, लेकिन वो अपने शब्दों में क्रोध ना आने दें। हम बहुत बार चर्चा की है, आदेशात्मक होते हैं माँ बाप, माँ अपनी लड़की को आदेश देगी सदा, यहाँ ना जाना, उससे बात ना करना, ये वस्त्र ना पहनना, ऐसे नहीं चलना, ऐसे चलना, आदेश। अब वो जरूरी थोड़ा ही बच्चे उसका आदेश माने, वो कहेगी घर की राजा तो मैं, बाहर की राजा तो मैं खुद हूँ, तो नहीं मानते वो, उनका ईगो भी हर्ट होता है। तो आजकल बच्चों से भी माँ बाप को ऐसी स्वीटली रेस्पेक्टफुल्ली बात करनी चाहिए ताकि उनका ईगो हर्ट ना हो। तो खुद को स्वमान में स्थित करें, बच्चों को आत्मा देखें, अपनी शुभ भावनाओं को जरा जागृत रखें और बहुत ही अच्छे शब्दों में वो बच्चों को अपनी बात कहें, ताकि ये ना लगे ये तो हमें सारा दिन शिक्षाएं देते रहते हैं, ये तो उपदेश ही देते रहते हैं, हम उपदेश कहाँ तक सुनेंगे भाई। और अपने घर में एक स्पिरिचुअलिटी का माहौल बनाना चाहिए योग अभ्यास करके। भोजन बनाते हुए माँ को विशेष रूप से मैं परम पवित्र आत्मा हूँ ये बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए, ताकि भोजन भी पवित्र हो और योग अभ्यास करने से घर के वाइब्रेशंस भी बहुत पवित्र और पॉजिटिव हो जाएं। तो जब बच्चे उस वाइब्रेशंस में रहेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। माँ बाप को विशेष रूप से सवेरे जब बच्चे सब सोए हैं 4 बजे उठकर 1 घंटा बहुत अच्छी साधना कर लेनी चाहिए, इस दृष्टि को भी ख्याल में रखते हुए कि इससे हमारे घर का माहौल अच्छा होगा, हमारे बच्चे बहुत योग्य बनेंगे, उनकी समस्याएं भी नष्ट होंगी। क्योंकि युवकों की अपनी बातें होती हैं, जैसे जैसे एक युवक बड़ा होता जा रहा है, अब वो बहुत कुछ पढ़ता है, सारा दिन बाहर की किताब पे पढ़ता, अपना सिलेबस की पढ़ता है, तो उसके विचार भी तो और तरह के होते जाते हैं ना। पहले वो माँ बाप की हर बात को मानता था, अब वो क्रॉस कर सकता है, ये बात ऐसे नहीं, ऐसे फलाने ने ऐसे कहा हुआ, या वो ये भी सोच सकता है ये कम पढ़े लिखे, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। तो इस सब में भी विद्यार्थियों को भी और माँ बाप को भी एक अच्छी हारमोनी लानी चाहिए। माँ बाप भी समझ लें कि बच्चे बड़े हो गए हैं, वो बच्चे नहीं रहे, वो हमारे फ्रेंड हैं, वो हमारे साथी हैं, उन्हें कार्यों में भी साथी बनाना चाहिए, बल्कि यह बहुत अच्छा हो कोई बात हो, कोई छोटी मोटी समस्या हो, सब मिल के उस पर चिंतन करें तो हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा समाधान सुझाए, निर्णय दे बहुत अच्छा। इस तरह घर में एक स्पिरिचुअलिटी का माहौल बनाया जाए, प्यार में बांध दिया जाए सब बच्चों को, जिसकी आजकल बहुत कमी हो रही है, तो बहुत अच्छा हो जाए।
बिल्कुल, मतलब एक फ्रेंड बन जाएं और फ्रेंड बन करके उनके साथ व्यवहार करने से शायद माहौल में जो एक कड़वाहट कई बार आ जाती है वो कड़वाहट दूर हो जाएगी और साथ ही सब कुछ सरल और सहज हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है बेटा जी कि बच्ची पता चल जाता है पेरेंट्स को कि शायद कुछ बाहर गलत कर रहे हैं, गलत साथियों के साथ आ गए हैं। क्योंकि कल एक फ़ोन कॉल हमारे पास आया था, तो उनकी माता जी का फ़ोन था कि बेटा भी इंजीनियरिंग कर रहा है। अब वहाँ से हम ये मैसेज मिलता है कि वो कुछ गलत कार्यों में लग रहा है। अब यहाँ से जब हम उन्हें फ़ोन करते हैं कि क्या ऐसा है, तो वो सीधे सीधे मना कर देता है। अब पता है कि वो कर रहा है क्योंकि विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी मिली है। अब हम बोलते हैं तो कह रहा है नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर पेरेंट्स का एक परेशान होना लाजमी हो जाता है। यहाँ पे फिर कैसे बच्चों को सिखाया जाए?
प्यार से बात की जाए, लेकिन एक सवेरे 5 बजे का जो प्रयोग हम सिखाते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ अच्छे थॉट्स दिए जाएं।
जी,
5 बजे पहले 1 घंटा योग हो जाए सवेरे, फिर 5 बजे अपने बच्चे को आत्मा देखें और उसे 5-7 मिनट गुड वाइब्रेशंस दें। हम इसकी चर्चा कराए हैं कल परसों भी।
जी जी।
और फिर अच्छे थॉट्स दें, जैसे माइंड टू माइंड उससे बात करें, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, देखो हमने तुम्हें बहुत अच्छी एजुकेशन के लिए भेजा है, हमें पूर्ण विश्वास है तुम्हारा भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा, ये समय है और सब बातों में न जाकर अपनी स्टडी पर ध्यान देने के लिए, जो तुमने लक्ष्य बनाया है तुम्हें सबसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, ऐसे मार्क्स लाने हैं तुम्हारा भी नाम रोशन हो और तुम कुल दीपक कहलाओ। सवेरे उठकर 5 बजे ऐसे गुड थॉट्स उन्हें दिए जाएं, तो इन वाइब्रेशंस को उसका सबकॉन्शियस माइंड रिसीव करने लगेगा। ये बात दूर से ही होगी, वो भले ही बेंगलोर में पढ़ता हो और ये भले ही दिल्ली में रहते हों, यहीं से काम करेंगे, रोज करेंगे 7 दिन तक। और भले ही फिर 3 दिन के बाद फ़ोन करके देखें, उसके शब्दों में, उसके वाइब्रेशंस में इन्हें अंतर अवश्य दिखाई देगा।
बिल्कुल, मतलब ये वाइब्रेशन देने का विशेष करके कार्य किया जाए। ये कार्य मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है, क्योंकि बोलने से शायद भ्रते जी सामने वाला कई बार हर्ट भी होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि संभव ऐसा भी होता है संभावना कि हो सकता है ऐसा ना भी हो और सामने वाला बोलता है तो भी व्यक्ति कई बार हर्ट हो जाता है।
ये भी है, और कभी ये भी होता है कि वो व्यक्ति उस चीज के इतने अधीन हो गया है कि वो उसे निकल ही नहीं सकता।
जी जी।
और माँ बाप को तो यही कहेगा कि नहीं,
बात यही थी प्रता जी, वो कह रही थी कि वो शायद अब स्मोकिंग करने लगा है या ड्रग्स लेने लगा है और इस बात से हम बहुत चिंतित हैं, और यदि ऐसा है तब तो ये परेशानी का सबब है।
इसलिए उनको अपने प्यार में लेना चाहिए, और ये जो सबकॉन्शियस माइंड का तरीका है इससे उनमें जागृति भी आएगी और एक एक्सेप्ट करने की शक्ति भी आएगी। और अगर 7 दिन रेगुलर किया जाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो फोन करके खुद बताएगा कि हाँ मैं गलती कर रहा था, अब छोड़ देता हूँ।
ब्रदर जी, कई ऐसे केसेस शायद हमने पहले भी चर्चा की है, कुछ बच्चे जैसे घर से निकल जाते हैं, मतलब चले गए और अब कोई कनेक्शन नहीं रखते, अब पेरेंट्स दुखी हैं इस बात को लेकर के, अब वो कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता या बात नहीं करता या बहुत कम से कम बात करता है कि मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। यहाँ पे भी पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि बच्चा हमारा फिर से नॉर्मल हो जाए, हमसे बात करे या घर वापस आ जाए, यहाँ पे कुछ किया गया?
बिल्कुल, यही एक सबकॉन्शियस माइंड को ट्रीट करने का अभ्यास और योग के वाइब्रेशंस उसको देना। जैसे हम चर्चा करते आ रहे हैं कि अब जन्म जन्म की बैड चीजें इमर्ज होनी प्रारंभ हो गई हैं, उसको नष्ट करने के लिए योग अभ्यास मेडिटेशन ही एकमात्र साधन है, वो भी उसके लिए उसको डोनेट करते हुए, तो उसमें जागृति आ सकती है।
बिल्कुल। चलिए मैं आपको अब मेल की ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमारे पास आया है महाराष्ट्र से, और ये मेल भी भ्राता जी कुछ ऐसे पारिवारिक संबंधों से लेकर के हैं। ये कहती हैं कि मेरे पति का कहीं और संबंध है, मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा 13 साल का है, अब बच्चों पे भी इस बात का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? शायद माता पिता की बातें भी बच्चों पे बहुत गहरा असर डालती हैं,
बहुत
ही असर दिखाई देने लगता है।
और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माँ की या बाप की हर बात को अच्छी तरह समझते हैं।
जी,
अब उनसे कुछ छुपाया जा नहीं सकता, इसलिए ये तो बहुत बड़ी गलती इसके द्वारा हो रही है। इनको संभल लेना चाहिए, क्योंकि अब ये बड़े भी हो गए हैं और इस तरह अगर ये गलत मार्ग पे जाते हैं तो पत्नी पर तो बुरा असर होगा ही, क्योंकि बहनों का, माताओं का जो स्वभाव है, उनकी जो मेंटेलिटी है वो और तरह की होती है। वो नहीं देखना चाहती कि उसका पति कहीं इधर उधर देखता भी हो। लेकिन बहुत लोगों में आजकल वासनाएं बहुत बढ़ी हुई हैं, इसका ये इफेक्ट है। यहीं पर स्पिरिचुअलिटी ने बहुत मदद करी है। तो माता को चाहिए अपने पति को पवित्र भोजन खिलाए। भोजन बनाते हुए कम से कम 100 बार याद करे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और खिलाते हुए संकल्प करे इस पवित्र भोजन को खाने से इनका चित्त पवित्र हो जाए। अब ऐसे में क्या होता है, जो बहनें होती हैं उनके मन में एक बहुत ज़्यादा उदासीनता, अपने पति के प्रति बहुत बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, और कहीं शब्दों में भी ये दिखाई देगी,
व्यवहार में भी
दिखाई देगी, तो इससे सब कुछ खेल बिगड़ सकता है। और पुरुष ऐसा होता है, क्योंकि ये वासनाएं ऐसी चीज है, सबसे बुरी चीज है ये काम वासना। जब मनुष्य इसके अधीन हो जाता है, कई नारियां भी ऐसी हैं जो पुरुषों को फंसा लेती हैं, और जब ऐसा बंधन बन जाता है तो मनुष्य सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इतिहास भी गवाह है, उसको मरने मारने की भी बात चिंता नहीं रहती है, खत्म कर दो इन सबको, मुझे तो यही करना है।
आजकल बहुत सारी केसेस सुनने में आते हैं,
इसलिए इस बहन को बहुत शांत चित्त होकर योग अभ्यास करना चाहिए, उसको वाइब्रेशंस भी देने चाहिए और पवित्र भोजन भी खिलाना चाहिए, तब ये सिचुएशन बदल जाएगी।
बिल्कुल। और बच्चों के लिए क्या कहेंगे भ्राता जी, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, माता जी कैसे हैंडल करें
बच्चों? बस माता जी को यही चाहिए कि योग के वाइब्रेशंस घर में फैलाए, क्योंकि बच्चों को तो न इसकी चर्चा की जा सकती और वो तो सूक्ष्म इफेक्ट होता ही जाएगा। बस माँ के स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस उन्हें भी सेफ कर सकते हैं।
जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आज के सुंदर चर्चा के लिए, सुंदर प्रकाश के लिए। मित्रों, सचमुच बहुत ही गहन चर्चा है, बातें हैं, परिवार है, हम सामाजिक प्राणी हैं और हम सब एक परिवार से जुड़े हुए हैं। हर एक का एक छोटा परिवार भी है, फिर समाज भी हमारा एक परिवार है, और जहाँ कहीं भी ऐसी समस्याएं होती हैं तो उन सब के निदान के लिए हम सबका चिंतन करना बहुत आवश्यक हो जाता है, और विशेष करके जहाँ माता पिता और बच्चों की बात आती है। माता पिता हमेशा अपने बच्चों के कल्याण की बात ही सोचते हैं कि बच्चे बड़े होकर के अच्छे इंसान बने, उनका भी नाम रोशन करें, देश का भी नाम रोशन करें, और इसी के लिए सभी माता पिता प्रयासरत रहते हैं। बच्चों को भी जरूर इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ से मैंने शुरुआत की थी मित्रों, कि माता पिता सचमुच परमात्मा तुल्य हैं हमारे लिए इस धरा पर, और यदि कभी वो हमें डांट देते हैं या मार देते हैं तो इसका हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। चलिए पेरेंट्स अब अलग तरीका इस्तेमाल करें वो एक अलग बात है, लेकिन यदि कभी ऐसा कर देते हैं वो, तो सचमुच इसमें हित रहता है। वो कैसे, मैं वो आपको सुनाने वाला था कि बचपन में लगभग 7-8 वर्ष या 9 वर्ष की उम्र रही होगी मेरी, तो कुछ मित्रों के साथ, पहले फिल्म देखने का बड़ा क्रेज रहा करता था हम सभी मित्र मंडली को, तो पैसे तो हुआ नहीं करते थे कि इतने पैसे हम लाएं कहाँ से, तो जब फिल्म में थिएटर में इंटरवल हुआ करता था तो उसमें हम लोग घुस जाया करते थे सभी मित्र, और वहाँ से फिल्म देख करके आ जाया करते थे, तो लगातार ये सिलसिला चलता रहा। अब जब फिल्म देखा करते थे तो हीरो जो करता था वो सारी चीज़ें भी हम करने की कोशिश किया करते थे कि ये कर लें वो कर लें। अब कहीं से ये खबर मम्मी तक पहुँच गई। अब जैसे मम्मी को ये पता चला कि ये फिल्म के इंटरवल में घुस जाया करता है अपने दोस्तों के साथ, शिकायत तो पहुँचनी ही थी। जब मैं घर पहुँचा अपनी हीरो पंथी दिखाते हुए, मम्मी ने पकड़ा एक हाथ से मुझे और जूम की मेरी मरम्मत हुई। खूब पहले तो चांटों की बरसात हुई, फिर चप्पलों की बरसात हुई, फिर चिमटों की बरसात हुई। अब लगातार मैं रोता रहा, मैंने कहा कि अब नहीं करूँगा, लेकिन वो उन्होंने बार बार मुझसे बुलवाया, 25-30 बार तो बुलवाया होगा, और तब तक मेरी मरम्मत होती रही। मैंने कहा कि नहीं, अब मैं ये नहीं करूँगा। तब अंदर में लग रहा था कि मम्मी इतना क्यों मार रही हैं मुझे, तकलीफ़ तो हो रही थी, लेकिन बाद में मुझे जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे ऐसा लगा कि सचमुच उस समय यदि ये मरम्मत ना हुई होती तो शायद मैं आज जहाँ हूँ वहाँ ना होता। तो कई बार ये चीज़ें कितनी कल्याणकारी होती हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ ने मार के मुझे महान बना दिया, और ये मार ना होती तो सचमुच कहीं छोटे से छोटे दर्जे में यदि वो सारे कार्य करते तो और बहुत सारी आदतें, बुरी आदतें लग जाती ना। एक मार ने, एक सीख ने यहाँ तक पहुँचाया, अच्छाई की ओर बढ़ाया। तो मित्रों, मैं अपने टीनेजर, आप यंगस्टर्स को ये कहना चाहूँगा कि कभी भी माता पिता यदि हमें डांटते हैं या मार देते हैं या कुछ सीख देते हैं तो जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा कल्याण होता है। उसे कल्याण के भाव से स्वीकार करें तो जीवन सचमुच महान बनेगा। और जैसे भ्राता जी कहते रहते हैं कि माता पिता का आशीष भी आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, वो आशीर्वाद भी हम उनसे प्राप्त करते रहें। बने रहेगा समाधान कार्यक्रम में, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।